परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारम्भम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। दलो द्वादसांग मयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। समय हुआ है अब जिज्ञासु भाई बहन बैढ़ाला की पुस्तकें खोल करके स्वाध्याय के लिए तत्पर हुए हैं। आपने छैढ़ाला की प्रथम ढाल के माध्यम से संसार की 84 लाख योनियों में चार गतियों के माध्यम से भ्रमण करते हुए जीवों की जो अपनी और पर की तमाम अनंत संसारी जीवों की कहानी है उसके बारे में जाना। पुनः ये जीव संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है इस बात को बताने वाली यह दूसरी ढाल कि मिथ्या बुद्धि अर्थात सर्वप्रथम ही उन्होंने कहा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माहि विपर्ययत्व। जीवादिक जो सात तत्व हैं उन पर विपरीत श्रद्धान करना यही मिथ्यात्व है। जीव को जीव नहीं मानना, जीव को अजीव की तरह मानना, अजीव को जीव की तरह मान लेना, ये सब विपरीत श्रद्धान के कारण आत्मा के अंदर मिथ्या बुद्धि आती है और यही मिथ्या बुद्धि संसार परिभ्रमण का कारण है। अब आगे चलते हैं मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय का शुभारंभ। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। देव सास गुरु की विनय करने के लिए जो आज्ञा आचार्यों ने दी है उसके अनुसार ही मन वचन और काय इन तीनों योगों को संभाल करके सावधानी पूर्वक आत्मा के अंदर छिपी वीतराग विज्ञानता जो है उसको नमन किया गया। पहले आपने मंदिरों में देखा होगा शास्त्र की गद्दी पर जब शास्त्र को विराजमान किया जाता था माने अलमारी से निकाल करके ग्रंथ को मस्तक पर रख के लोग लाते थे पढ़ने वाले और अपनी गद्दी पर स्वयं बैठ करके और सामने ऊंची चौकी के ऊपर शास्त्र को बड़ी श्रद्धा के साथ विराजमान किया जाता था और वही श्रद्धा के साथ उसका पठन पाठन किया जाता था। लोग सुनने वाले सुनते थे, बोलने वाले बोलते थे। आज भी परंपरा है लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के कारण विनय के अंदर थोड़ा सा बदलाव परिवर्तन आ गया और यही कारण है कि सद्विद्या सम्यक ज्ञान की कमी आने लग गई। हो सकता है पुस्तकीय ज्ञान ज्यादा मिल जाए लेकिन विनय में कमी आने के कारण वह विद्या पारलौकिक नहीं हो पाती है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं कर पाती, इसलिए उस विद्या को पा करके भी लोग विनयी नहीं बन पाते और मालूम बेमालूम देव सास गुरु का अनादर भी कर देते हैं। देखो आपने रानी कनकोदरी अंजना के पूर्वों की बात सुनी होगी कि रानी कनकोदरी ने अभिमान के अंदर आकर के उसने अपनी सौत को भगवान की पूजन ना कर पाने देने के लिए चैताली की प्रतिमा को बावड़ी में डाल दिया। देखो उसकी बुद्धि कैसी हो गई। केवल कारण क्या था कि ये भगवान की पूजा ना करने पाए, और उसने उस समय ये नहीं देखा कि मेरे अपने कितना कर्म का बंध होगा। तुरंत उसे जैसे ही एक आरिका माता जी ने जाना, संबोधन दिया, अरे बेटी तूने बहुत बुरा किया है, नरक का द्वार खोला है। एकदम सहम गई और उसने तुरंत बावड़ी से निकाल कर जिन प्रतिमा को मंदिर के अंदर विराजमान किया, प्रायश्चित किया, सब कुछ करने के बाद भी अंजना की पर्याय में उसको 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। ये उसे किसने बताया? एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि पुत्री कर्म करते वक्त व्यक्ति उसके कुफल के बारे में नहीं सोच पाता। तूने ऐसे ऐसे जिन प्रतिमा का अपमान किया था 22 पल के लिए, और इसलिए तुझे 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा है। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं और तुझे पति का संयोग मिलने वाला है। तो भव्यात्माओं, कर्म की जो सूक्ष्म व्यवस्था है वह जैन धर्म के अंदर बताई गई है, इसीलिए कर्म सिद्धांत पर टिका ये जैन धर्म है, जो कि पूर्ण आस्तिकता को बताता है कि आप स्वयं अपने कर्मों के मालिक हैं, आपको सुख दुख देने वाला कोई ईश्वर नहीं है, आप स्वयं अपने कर्मों के विधाता हैं। जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों पर जब विपरीत श्रद्धान कर लेते हैं तो अपना संसार बढ़ जाता है। और यही शिक्षा गुरुजन देते हैं कि ज्ञान चाहे थोड़ा हो लेकिन वो सम्यक ज्ञान है अगर, तो संसार से तिरने का कारण बन जाएगी। और बहुत सारा भी ज्ञान है लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो संसार को बढ़ाने का ही कारण बन जाएगा। तो हमने जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान को जाना कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, इस प्रकार से अपनी आत्मा के प्रति मान लेना, यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। जबकि शरीर भी अपना नहीं तो सुख दुख, मकान, स्त्री, पुत्र, धन, ये सब अपने कैसे हो सकते हैं? विपरीत सिद्धांत कर करके आत्मा को ठग लिया जाता है। आगे की श्लोकों के माध्यम से इसमें कहा जा रहा है कि अजीव तत्व, जीव के बाद किसका नंबर आता है? अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, ऐसे 7 तत्वों के नाम हैं। अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत कैसे होता है? आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है जिसके कारण ये जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है या मिथ्या दृष्टि होता है? तो 5वें नंबर के छंद में कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, राग आदि प्रगट ये दुख दैन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान, सबसे पहले जानना है अजीव क्या है। जीव से भिन्न अजीव है, और हमने कल बताया था आपको कि अजीव के 5 भेद हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल। तो जीव के प्रति जो उल्टा श्रद्धान किया तो मिथ्या मान्यता हो गई। अब अजीव के प्रति विपरीत श्रद्धान कैसा है? तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर का जन्म हुआ तो उसमें मेरा जन्म हुआ, आत्मा का जन्म हुआ। और तन नशत आपको नाश मान। जब शरीर नष्ट होता है तो अपनी आत्मा का नाश मान लेते हैं। आप कहेंगे बात तो सही है, क्योंकि शरीर लेकर के ये जीव जन्मा है, लेकिन जो वास्तविक है, जो अमूर्तिक आत्मद्रव्य जीव द्रव्य है, उससे तो अजीव अलग है ना। अजीव कभी जीव नहीं बन सकता और जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। तो अजीव जो जिसका जन्म हुआ है शरीरधारी प्राणी के रूप में, वह शरीर का जन्म हुआ है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ऐसा श्रद्धान करना तो सच्चा है, सही मार्ग है। लेकिन शरीर के जन्म में ही आत्मा का जन्म और शरीर के मरण में ही आत्मा का मरण मान लेना। आत्मा कभी भी मरती नहीं, इसीलिए तो दूसरा शरीर धारण करती है। अगर मर जाती तो आत्मा का भी दाह संस्कार किया जाता। दाह संस्कार किसका किया जाता है? शरीर का। तो तन नसत आपको नाश मान, शरीर की मृत्यु में आत्मा की मृत्यु मान लेना, यही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। शरीर के जन्म में आत्मा का जन्म मान लेना, यही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। यानी अजीव को अजीव रूप से मानो, जीव को जीव रूप से मानो। इसके बाद ये मान लो कि संसार के अंदर ये जीव व्यवहार ने से शरीर को धारण करके संसारी जीव कहलाता है। वहां ये नहीं कहा कि मुक्त जीव आया है, जीव तो है और जब कर्मों से हल्का हो जाता है तो मोक्ष में चला जाता, अकेला रह जाता है। और जब संसार में आता है तो शरीर को लेकर के आता है, इसलिए वह संसारी जीव कहलाता है, वह संसारी शरीर नहीं कहलाता। तो व्यवहार से है लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं समझना, ये अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है। और रागादि प्रगट ये दुख दयन। अब आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? आश्रव तत्व माने कर्मों का आत्मा में आना आश्रव है, कर्मों का आना आश्रव है। फिर आप पढ़ते ना, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। पुण्य से शुभ का आश्रव होता है और पाप से अशुभ का आश्रव होता है। तो ये तो आश्रव की सच्ची परिभाषा है, लेकिन उसका विपरीत श्रद्धान क्या करेंगे? रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। यानी कि राग राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्री के विषयों का वो सेवन करता है, उसमें आत्म सुख मान लेता है, ये आश्रव है और कर्म के निमित्त से आत्मा में आए हैं, लेकिन उन्हीं में सुख दुख मान लेना। जो दुखद कर्म के आश्रव हैं उनको भी सुख स्वरूप मान लेना, उसमें भी सुख की अनुभूति करना। हमने आपको संसार दर्शन की बात बताई थी। संसार दर्शन और क्या है? तमाम विपरीत श्रद्धांत मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। अगर कोई कष्ट पड़ोसी पर आता है तो उतना दुख नहीं होता, और अपने से जो संबंधित हैं उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तो अपने अपने कष्ट से भी ज्यादा अपनी संतान के ऊपर आने वाले कष्ट को व्यक्ति अनुभव करता है, इसलिए कि संसार में उनके प्रति विशेष राग द्वेष है। तो ऐसे आश्रमों में सुख मान लेना, दुख मान लेना, यानी सच्चा श्रद्धा ना करके कि भाई कर्म है, आए हैं अपना फल दे करके जाएंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम शुभ कर्मों का आश्रय करें, अशुभ से बचें, और कर्म और आत्मा को अलग अलग मानना, ये तो सच्चा श्रद्धा नहीं। लेकिन जो आश्रय है उसी को आत्म तत्व के माध्यम से आत्मा का ही सब कुछ मान लेना, ये आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धा नहीं। आपको क्या जानना है कि जीव तत्व की तरह अजीव तत्व का भी विपरीत श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानने लगता है और शरीर के नाश को अपनी आत्मा का नाश मानने लगता है। तो इसलिए बार बार समझाया जाता है, मालूम हो जाता है एक बार, लेकिन फिर चूंकि उसी में रचे पचे हैं अनादि काल से, तो फिर उसी के अंदर विपरीत श्रद्धान भी होने लगता है। इसलिए गुरुजन बार बार उसको समझाते हैं, आत्मा को शरीर के सदृश अजीव तत्व की आत्म रूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। धन दौलत आदि के रागादि भाव स्पष्टता दुख देने वाले हैं, उन्हीं राग द्वेष मान माया क्रोध लोभ का वह सेवन करता है और उसमें सुख मानता है, और दुखद कर्मों के आश्रय को सुख का कारण मानना, ये आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान। विपरीत श्रद्धान के साथ सच्चा श्रद्धान मान ले तो हम सम्यक दृष्टि बने रहेंगे। कर्म आए हैं सुख दुख देंगे, और कर्मों से छूटने का उपाय अपने को करना, ये सच्चा श्रद्धान होता है और यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। लेकिन यहाँ मिथ्यात्व के कारण जो जीव की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है, उस उल्टी बुद्धि को सुलटाने के लिए जो उल्टा श्रद्धान कर रखा है उसके बारे में बताया जाता है। तो अब आगे ऐसे हो गया जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान कर लिया, तो आखिर बुद्धि जो है मिथ्या ही बनी रही। तो हे भव्यात्मन, अपनी जीवात्मा को अनंत गुणों से परिपूर्ण मानना और अजीव और अजीव के निमित्त से, उद्गल के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय हो रहा है उसे संसार का ही कारण मान करके और आगे उससे छूटने का प्रयास करना, ये सम्यक श्रद्धान बनाना है। आगे कहते हैं बंध तत्व और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान कैसे होता है। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करें निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। बंध किसे कहते हैं, हमने बताया था, पैडी सील सहाओ जीवन गाणम अनाई संबंधो, कणियों वले मलम हुआ ताणत तित्तम संयम सिद्धम। जैसे ही स्वर्ण पाषाण में खान से निकलने पर उस पर किटकालिमा लगी होती स्वाभाविक रूप से, इसी प्रकार से आत्मा और कर्म का जो संबंध है उसका नाम है बंध। यानी कोई मेहमान आया, उसको अच्छे से आवभगत करके बिठाया गया, और उसके बाद फिर प्रेम से उसके गले मिल जाना, उससे खूब राग की बातें करना, न जाने कहाँ कहाँ की बातें मित्रता की करके उसे बंधन में जकड़ना, तो स्वयं बंध गए और उसको भी बांध दिया। तो आत्मा के साथ कर्मों का बंध जाना यही कहलाता है बंध। अब उस बंध तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान कैसा, मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ कर्मों का फल भोगने में अरुचि रखता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है। और सम्यक दृष्टि क्या करता है, वो तो कहता है कि जब हमने ही अशुभ कर्म किए हैं तो अशुभ कर्म का फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना, ऐसा सोचता है। देखो नरक के अंदर सब नारकी लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं वे अपने कर्म का फल समझ करके वहां मार काट करते। मार काट तो सब कर रहे हैं, परंतु सम्यक दृष्टि जीव की भाई जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। तू तुझे सहना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा सा धैर्य आता है कि भाई हमने कर्म किए थे इसलिए हमें भोगना पड़ रहा है उसका फल दुख रूप में। अब हम आगे अशुभ कर्म नहीं करेंगे तो हमें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करता है, शुभ में राग और अशुभ में खूब रोता है, विलाप करता है, मेरी तेरी करता है और न जाने कितने लोगों को दोषी बना लेता है। तो उसने दोषी दूसरों को नहीं बनाया, उसने अपनी आत्मा को दोषी बना लिया, माने अपनी आत्मा को ठग लिया। इसका मतलब कर्म सिद्धांत उसने जाना ही नहीं। अगर कर्म सिद्धांत जान ले तो सीता ने क्या किया था, राम ने उसे वन में भी निकाला तो भी कहती है कि मैंने ही कुछ कर्म किए होंगे। सारी दुख को वो अपने ऊपर ले लेती है, मैंने ही अपने जीवन में ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आज होते हुए भी मुझे फल भोगना पड़ रहा है। और आखिर बात क्या थी कि वेदवती कन्या की पर्याय में उसने एक भाई और बहन को बात करते देख करके उनके ऊपर आरोप लगाया था, आ करके गांव में हल्ला मचा दिया कि ये तो खराब हैं, इनका तो चारित्र बुरा है। और उस कर्म का उदय सीता की पर्याय में आया तो निर्दोष सीता को किस तरह से उसे अपवाद का दुख भी सहना पड़ा, वनवास का दुख भी सहना पड़ा और आखिर में उसने वैराग्य भाव धारण करके उन कर्मों को नष्ट किया है। तो महापुरुष क्या करते हैं, कर्म के फल का चिंतन करते हैं कि हमने कर्म किए थे उसको भोगना पड़ रहा है। और जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख से मतलब आचार्य की परिभाषा में मिथ्यात्व का उदय होता है, वे सुख में तो फूल जाते हैं और दुख में विचलित होने लगते हैं, धैर्य खो देते हैं। ऐसे लोगों को कहा कि इससे तू आत्मा के स्वरूप को भूल गया है, अपने श्रद्धान को सच्चा श्रद्धान बना, कर्म बंध की स्थिति को जानकर उससे पीछे मत हट। यदि पीछे हट गया वही तेरा श्रद्धान विपरीत श्रद्धान हो जाएगा और संसार में पुनः पुनः वह बंध का कारण बन जाएगा। तो आत्मा का हित करने वाले, यानी कि आप किसकी बात सुन रहे, बंध की बात, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान करना कि सुख में फूल जाना अशुभ में विचलित हो जाना, इसका मतलब असली कर्म व्यवस्था को जाना ही नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव उसके असली व्यवस्था को जानकर उस बंध से अलग होने का उपाय करते हैं। अब मैं ऐसा करूं कि इस प्रकार का कर्म बंध ना होने पाए, मैंने दूसरों पर जो दोषारोपण किया वह मेरी भूल है, तो सच्चे बन जाएंगे, सही बन जाएंगे, सही दिशा में चलेंगे। विपरीत श्रद्धान करने वाला मिथ्या दृष्टि बन जाता है। आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है। इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण वैराग्य और निज ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती हैं। किसी को कहो कि भाई तुमने ही कुछ कर्म किए होंगे इसलिए, चाहे वो धन का घाटा है, चाहे शरीर के प्रति है, चाहे आत्मा के प्रति है, जो विपरीत श्रद्धान बना उसे समझाया जाता, उस वक्त समझ में नहीं आता कैसे आप कह रहे हैं, उसने मुझे गाली दी थी इसलिए मुझे कष्ट हुआ, तो जल्दी नहीं समझ पाते। लेकिन आचार्यों की वाणी पर अगर हम श्रद्धा करेंगे तो धीरे धीरे वो बातें समझ में आती हैं। तो राग रंग और पर के ज्ञान में ही वह निमग्न रहना चाहता है। संसार की मधु की एक बूंद, शहद की एक बूंद मुख में आने पर वो सुख की अनुभूति करने लगता है। फिर वो बेचारा सोच ही नहीं पाता कि संसार के अंदर और भी कितने सुख हैं। लेकिन जब गुरु उन्हें समझाते हैं ये जो मीठापन है ये तेरे राग को बढ़ाने वाला है, और जो चीज राग को बढ़ाने वाली है वो दुख उत्पन्न करने वाली है, इसलिए अपने विपरीत श्रद्धान को कम करो, विपरीत सिद्धांत से हट जाओ, सही करो विपरीत सिद्धांत को, सम्यक सिद्धांत में परिवर्तित करो। और तो इस प्रकार से जब वो निमग्न रहना चाहता है और उनमें ही सुख को ढूंढता है, तो ये संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। संवर किसे कहते हैं? वही कर्म, कर्म और आत्मा का, जीव का एक साथ मिल जाना, ये बंध है। और आते हुए कर्मों को रोकना ये कहलाता है संवर। तो रोका तो नहीं हमने, और बल्कि विपरीत सिद्धांत करके कि हम भाई कर्मों को रोकें, पूजा पाठ करें, अच्छी बात करें, परोपकार करें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो ये तो सच्चा सिद्धांत हो जाता और सच्ची दिशा में अपना कदम हो जाता। लेकिन उल्टा सिद्धांत करके, और हमने आते हुए कर्मों को तो रोका नहीं और बल्कि उनको बढ़ा लिया, तो ये संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। एक एक श्लोक के माध्यम से तत्वों के प्रति, तत्व का मतलब ही क्या होता है? सार। तत्व का मतलब सार होता है, तो सार को ग्रहण करके और हमें निस्सार को छोड़ देना है, यही उन सभी तत्वों के प्रति अपना सच्चा श्रद्धान होगा। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध और संवर, यहाँ तक हम चले हैं, निर्जरा और मोक्ष आएगा। तो इन तत्वों के प्रति जैसा जिनवाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहा गया है, उसी प्रकार से हम श्रद्धान करके सच्चे श्रद्धानी बनकर मोक्ष मार्गी बने रहें। जावाणी के ज्ञान ते